ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वन चारे यमुना तेरा वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभागिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय शील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंध तीन अध्याय पांच मैत्रेय से विदुर की वार्ता श्लोक संख्या 12। मुनिर्विवक्षुर भगवद्गुणानां सखापिते भारत माह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिर्गृहीतानुहरे कथायां मुनिर्विवक्षुर् भगवद्गुणानां सखा पिते भारत माह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिर्गृहीतानुहरे कथायां मुनिर्विवक्षुर भगवद्गुणानां सखा पिते भारत माह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिर ग्रहितानुहरे कथायाम। दोहराइए शब्दार्थ। मुनि मुनि ने विवक्षु वर्णन किया भगवत भगवान के गुणानाम दिव्य गुणों का। सखा मित्र अपि भी ते तुम्हारा भारतम महाभारत। आह वर्णन किया है कृष्ण कृष्ण द्वैपायन व्यास। यस्मिन जिसमें नृणाम मनुष्यों के ग्राम्य सांसारिक सुखानुवाद है लौकिक कथाओं से प्राप्य आनंद। मते ही ध्यान ग्रहितानु अपनी ओर खींचने के लिए हरे भगवान की कथायाम भगवत गीता। अनुवाद तथा तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ये विदुर मैत्रेय मुनि से विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो वे कह रहे हैं आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। अनुवाद दोहराइए। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। तात्पर्य महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास समस्त वैदिक वाङ्मय के रचयिता हैं, जिसमें से वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि भागवत में कहा गया है श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया हो। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो तभी वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं जिनसे समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विजबंधु अर्थात स्त्रियों श्रमिकों तथा उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूपों में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है, और श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यास देव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे भगवद गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। शील व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवद गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णव वृंदों से इस विषय पर कुछ कहने का साहस करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि आयोजकों से गलती हुई है कि श्रीमान राधेश्याम प्रभु की उपस्थिति में उन्हें मुझे यहाँ पर बैठने के लिए कहा। श्रीमान राधेश्याम प्रभु संपूर्ण भारतवर्ष में व संपूर्ण विश्व में प्रचुर मात्रा में भागवत ग्रंथ का वितरण कर रहे हैं, तो वास्तव में इस विषय पर कहने के सर्वोच्च अधिकारी इस सभा में वे ही हैं। लेकिन परिस्थिति के आधार पर अब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो जिस प्रकार से सूर्य की उपस्थिति में एक कांच भी थोड़ा प्रकाश दे देता है, उसी प्रकार से श्रीमान राधेश्याम प्रभु की उपस्थिति में उनकी पवित्रता के आधार पर मैं कुछ उत्तम आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगा। इस श्लोक के माध्यम से स्वयं विदुर किस भावना से व्यासदेव ने महाभारत ग्रंथ की रचना की है, उस रहस्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विदुर कह रहे हैं कि व्यासदेव ने पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया है, और इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के माध्यम से कृष्ण कथा भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। अर्थात व्यासदेव ने संपूर्ण महाभारत की रचना केवल इसीलिए की है कि हम सभी उस महाभारत में वर्णित जो भगवत गीता है उसके रस का आस्वादन कर सकें। इसी उद्देश्य से व्यासदेव ने महाभारत लिखा हुआ है। तो यहाँ जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के वितरण के लिए हम प्रचुर मात्रा में वो श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने इसी विषय पर आप सभी के समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण वे सनातन हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है, उनके जन्म की लीला होती है, तो उसी प्रकार से भगवद गीता यहाँ भी भगवान से अभिन्न है और शाश्वत ग्रंथ है। भगवद गीता का कभी जन्म नहीं होता है, यहाँ शाश्वत ग्रंथ है। भगवद गीता का अवतरण होना यहाँ भगवान की एक लीला है। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने यहाँ लीला कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रस्तुत की, अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, और करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने यही भगवद गीता सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई। तो ऐसे भगवद गीता का अवतरण होते रहता है, भगवद गीता का आविर्भाव होते रहता है। तो यह भगवद गीता भगवान से अभिन्न है और शाश्वत ग्रंथ है, और हम सबके लिए यहाँ भगवद गीता भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर अर्जुन के माध्यम से प्रकट की। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि व्यासदेव ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत, महाभारत नामक अनेक कृतियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हों और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया हो।
वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो तभी वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं जिनमें समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विज बंधु अर्थात स्त्रियों श्रमिकों तथा उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते हैं। अर्थात श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो वेद हैं, वेदांत सूत्र हैं, उपनिषद हैं, ये सब विद्वान श्रेणी के लोगों के लिए हैं। जो लोग पहले से ही इस संसार के इंद्रिय तृप्ति के लौकिक व्यवहार से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जो लोग इस संसार के इंद्रिय भोग में अभी भी बंधे हुए हैं, वैसे स्त्री शूद्र द्विज बंधु वे वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्रील व्यास देव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे भगवद गीता का भी लाभ उठा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है कि निम्न श्रेणी के लोग जो शायद वेद उपनिषद ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे या पढ़ेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, वे लोग महाभारत पढ़कर भगवान का जो दिव्य संदेश है भगवद गीता उसका लाभ उठाएं। तो इस उद्देश्य से व्यासदेव ने इस ग्रंथ की रचना की और जन सामान्य में भी ऐसी ही भावना थी कि महाभारत वो तो निम्न श्रेणी के लोगों के लिए है और महाभारत में अंकित जो भगवद गीता है वह भी निम्न श्रेणी के लोगों के लिए है, इस प्रकार की भावना थी। लोग भगवद गीता को उस समय उतना अधिक सम्मान नहीं दिया करते थे क्योंकि भगवद गीता महाभारत के ही का ही एक अंश है। भीष्म पर्व में अध्याय 25 से लेकर अध्याय 42 तक भगवद गीता का वर्णन है। तो ऐसी अवस्था में जब भगवद गीता को बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था उस समय श्री श्रीमद् शंकराचार्य उन्होंने अपने प्रचार कार्य के दौरान भगवद गीता को बहुत अधिक बल दिया। लोग उस समय वेदों का अध्ययन उपनिषदों के अध्ययन में बहुत रुचि ले रहे थे लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि इन सारे उपनिषदों का सार भगवद गीता है और यदि हम इस भगवद गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम इन उपनिषदों को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से शंकराचार्य ने भगवद गीता को गीतोपनिषद का नामकरण कर भगवद गीता की महिमा संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में प्रसारित की और बहुत ही विस्तार से शंकराचार्य ने इस भगवद गीता का प्रचार किया और इस भगवद गीता पर सबसे पहले टीकाकार शंकराचार्य ही हुए। अवश्य जो भगवद गीता का उन्होंने संदेश प्रदान किया वो शायद भगवद गीता के यथारूप संदेश से भिन्न था लेकिन फिर भी शंकराचार्य ने अपने प्रचार के दौरान इन वैदिक ग्रंथों की समाज में सम्माननीय अवस्था वो विशेष रूप से भगवद गीता पर बल यहां शंकराचार्य ने समाज में प्रस्तुत किया। तो भगवद गीता यहां सारे शास्त्रों का सार है, गीतोपनिषद के नाम से प्रचलित है और शंकराचार्य के पश्चात सभी अन्य संप्रदायों के आचार्यों ने भगवत गीता पर बल दिया है। सभी महान आचार्यों ने भगवत गीता पर अपनी टीकाएं प्रस्तुत की है और इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि अनेकानेक ग्रंथ हैं लेकिन सर्वाधिक टीकाएं आचार्यों ने भगवत गीता पर ही प्रस्तुत की है। इस प्रकार से सारे ग्रंथों में भगवत गीता बहुत ही विशेष ग्रंथ है जिसका वितरण इस माह में हम सभी बहुत ही उत्साह से कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही आनंददायक अवस्था है। श्रील प्रभुपाद जी इस भगवत गीता को यथारूप में हम सबको प्रदान करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। इतना आसान नहीं था श्रील प्रभुपाद जी के लिए यहां भगवत गीता हम सबको प्रदान करना। विस्तार से संघर्ष का वर्णन श्रील प्रभुपाद लीलामृत में किया गया है और उसको भी पढ़कर हम इन ग्रंथों का वितरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों के माध्यम से सामान्य जन के जो भी संशय हो सकते हैं भगवान की भक्ति के पथ को अपनाने के लिए, उन सारे संशयों को अर्जुन के माध्यम से भगवान एक एक करके निराकरण करके संपूर्ण भगवत गीता में भक्ति की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। हमारे हृदय में जो भी संशय हो इन संशयों की तुलना असुरों से की गई है। तो शंकराचार्य इस प्रकार से वर्णन करते हैं, वे कहते हैं कि जिस प्रकार से महारानी दुर्गा अपने अनेकानेक हाथों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए असुरों का वध करती है, ठीक उसी प्रकार से यह भगवत गीता अपने 18 अध्यायों के माध्यम से, जो कि भगवत गीता के 18 भुजाओं की तरह हैं, और उन भुजाओं में जो भगवान का संदेश है उस संदेश के अस्त्र शस्त्र के माध्यम से हमारे हृदय में जो भी संशय रूपी असुर हैं उन असुरों का वध होता है और हृदय में भक्ति का रोपण होता है। तो यह भगवत गीता की महानता है कि इसका अध्ययन करने से, श्रद्धा पूर्वक इसके प्रति समर्पित होने से निश्चित रूप से हमारे हृदय में पवित्रता आती है। तो इस प्रकार से इस भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो भी अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, पथ हो सकते हैं, उन सब की तुलना में भक्ति के पथ को सर्वश्रेष्ठ दर्शाकर भगवान ने हम सभी को भक्ति के पथ को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान की है। तो यह जो महाभारत ग्रंथ है जिसके मध्य में यहां भगवत गीता वर्णित है, तो शंकराचार्य ही यहां तुलना प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार से लोग इस संसार में लौकिक कथाओं को सुनने में रुचि लेते हैं, तो महाभारत में भी बहुत सारा लौकिक वर्णन है। युद्ध का वर्णन है, जुआ खेलने का वर्णन है, बहुत सारी राजनीति का वर्णन है जिसमें लोग रुचि ले रहे हैं। तो ऐसे लौकिक कथाओं के बीच भगवत गीता को रखा गया है जो कि एक बहुत ही पवित्र औषधि के समान है, हमारे हृदय को पवित्र कर सकती है। तो लोगों को मीठी लगने वाली वस्तुओं के बीच अंदर एक औषधि व्यासदेव ने रख दी है। इस प्रकार से मिठाई खाकर आप धीरे धीरे औषधि का भी सेवन करोगे और आपके हृदय का भावरोग दूर हो जाएगा। तो यहां व्यासदेव की योजना थी और निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत कर व आप सभी भक्तों के द्वारा प्रचुर मात्रा में इनका वितरण कर व्यासदेव की यह योजना पूर्ण हो रही है। शंकराचार्य एक तीसरी तुलना भी प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि सारे वेद शास्त्र जो व्यासदेव ने लिखे हैं अवश्य बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, दूध के समान हैं, लेकिन उन सारे ग्रंथों में ये जो भगवत गीता है, गीतोपनिषद है, यहां अमृत के समान है, तो इसका सेवन तो हमें अवश्य करना चाहिए। बाकी ग्रंथों को हमने पढ़ा भी नहीं चलेगा, लेकिन यह जो प्रमुख ग्रंथ है गीतोपनिषद, इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और यदि हम इसका अध्ययन श्रद्धा पूर्वक करें तो शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में अनेकानेक संसारी कार्य करते हुए, लौकिक कार्यों में रुचि लेते हुए, निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही बद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि भगवत गीता का अध्ययन किया है, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का अभ्यास किया है, तो हमारा सारा जो भी लौकिक बंधन है वहां टूट जाता है। और फिर हमारे अंत समय में हमें यमदूतों का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि हमने भगवत गीता का अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से भगवान के दूतों का ही दर्शन होगा। तो इस प्रकार से शंकराचार्य हमें अनेकानेक प्रकार से इस भगवत गीता का अध्ययन करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। शंकराचार्य एक और सुंदर तुलना प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय निश्चित रूप से बहुत ही विषम अवस्था थी, अवश्य पांडवों की सेना विशाल थी, लेकिन फिर भी कौरवों की सेना अति विशाल थी। और इतना ही नहीं, कौरवों की सेना में बहुत सारे संपूर्ण विश्व में विख्यात ऐसे अधिक सैनिक थे जिनसे सामना करना आसान नहीं था। तो शंकराचार्य वर्णन करते हैं कि इस महाभारत के युद्ध के समय कौरव की सेना में भीष्म और द्रोण जैसे प्रमुख योद्धा थे। हो सकता है कि शायद कोई अनेकानेक योद्धाओं को मारकर जीतने में सफल हो जाए, लेकिन भीष्म और द्रोण इन दोनों को जीत पाना आसान नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसी विशाल कौरव सेना जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी हैं, उसको पार करना, उसको जीत पाना उतना ही मुश्किल है जैसे इस भवसागर को पार करना। तो कहते हैं शंकराचार्य कि हो सकता है कि कोई सागर को पार करने में सफल हो जाए, लेकिन सागर के किनारे पर भीष्म और द्रोण हैं, उनसे युद्ध करके सागर को पार करना आसान नहीं है। और कहते हैं कि सागर के मध्य में ये जो सागर का जल है, इसकी तुलना शंकराचार्य जयद्रथ से करते हैं। और वे कहते हैं कि सागर में कर्ण जैसे मगरमच्छ हैं जिनसे आप बच नहीं पाओगे। और कहते हैं कि सागर में दुर्योधन जैसा जलचक्र है जो सागर को पार करते समय हमें अंदर खींच लेगा और हम अंदर ही सागर में मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से विस्तृत तुलना शंकराचार्य करते हैं और कहते हैं कि ऐसे कौरव सेना को पार करना उतना ही मुश्किल है जिस प्रकार से भवसागर को पार करना है। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और इस प्रकार से कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त कर अर्जुन सफलतापूर्वक कौरवों की सेना के साथ युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न यह भगवत गीता जो हमें प्राप्त हुई है, उसका आश्रय यदि हम स्वीकार करें, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के आश्रय को स्वीकार किया, ठीक उसी प्रकार से यदि हम सभी भगवत गीता के आश्रय को स्वीकार करें, तो जैसे अर्जुन कृष्ण का आश्रय स्वीकार कर कौरवों की सेना को जीतने में सफल हुए, ठीक उसी प्रकार से हम सब भी भगवत गीता के आश्रय को स्वीकार कर इस भव सागर को पार कर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस प्रकार से शंकराचार्य अनेकानेक प्रकार से हम सबको भगवद गीता पढ़ने के लिए व भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए व अधिकाधिक भगवद गीताओं का वितरण हो और सभी को इस शिक्षा की जानकारी हो, इसके लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई इस भगवद गीता को पढ़ता है तो वहां भगवद गीता रूपी गंगा में स्नान करता है। जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकली है और यह गंगा नदी बहुत पवित्र है और भारत में के उत्तर भाग में यह गंगा नदी बह रही है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, तो अवश्य गंगा स्नान से हमारे हृदय में हमारे जो भी पाप कृतियां हैं वहां सब धुल जाते हैं। और आचार्यगण हमें यहां भी बताते हैं कि जिस प्रकार से गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाते हैं तो यमुना स्नान से तो पुण्य कार्य भी धुल जाते हैं, अर्थात पुण्य कार्यों का बंधन भी नष्ट हो जाता है। तो गंगा स्नान से पापमय कार्यों का बंधन नष्ट हो जाता है और यमुना स्नान से पुण्य कार्यों का बंधन नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां भगवद गीता जो गंगा है, जो कि भगवान के मुख से आई हुई है, उसका अध्ययन करने से, इस भगवद गीता रूपी गंगा में स्नान करने से पाप और पुण्य करने की जो प्रवृत्ति है हमारे हृदय में वह नष्ट हो सकती है और हम निश्चित रूप से भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात हमें यह भी समझनी चाहिए कि अवश्य गंगा बहुत ही पवित्र नदी है लेकिन फिर भी केवल भारत के उत्तरी भाग में बहती है, वो पूना शहर में नहीं आती है। लेकिन भगवान के मुख से निकली हुई यहां जो गंगा है, यहां तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व के अनेकानेक देशों में अनेकानेक भक्तों के माध्यम से सर्वत्र बह रही है, इतने सारे लोगों के घर में बह रही है। तो ऐसी भगवद गीता में तो हमें निश्चित रूप से स्नान करना चाहिए। लोग बड़ी योजना बनाते हैं कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे और वहां गंगा स्नान करेंगे या गंगा सागर जाएंगे वहां स्नान करेंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की इतनी अपार कृपा है कि भगवद गीता रूपी उत्कृष्ट गंगा को हम सबके घर में बहने की योजना श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान की है। इस उत्कृष्ट भगवद गीता रूपी गंगा में हमें नित्य रूप से हर दिन स्नान करने का मौका श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है। तो इस प्रकार से हमें इस भगवद गीता रूपी गंगा में प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो शंकराचार्य ने इस प्रकार से अनेकानेक शब्दों में भगवद गीता का गुणगान किया है और श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनमें से कुछ लोगों को भगवद गीता के परिचय में ही उल्लेखित किया है। विशेष रूप से एक श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें शंकराचार्य कह रहे हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी उल्लेखित करते हैं, कि यदि एक भगवान की पूजा करनी हो तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, यदि किसी एक मंत्र का उच्चारण करना हो तो कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, और यदि कोई एक कार्य करना हो तो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और यदि कोई एक ग्रंथ पढ़ना हो तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से यह ग्रंथ बहुत ही विशेष है और श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को हम सब तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया है। यहां भगवद गीता पवित्र स्वर्ण की भांति है लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग के जो मंद भ्रमित लोग हैं उनके कारण इस स्वर्ण में कुछ दूषित अवस्था आ गई थी। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के परिचय में वर्णन करते हैं कि 700 से भी अधिक इस भगवद गीता के संस्करण बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी यथारूप भगवद गीता का संदेश नहीं प्रदान करता है। अर्थात इस भगवद गीता को यथारूप प्रदान करने के लिए, पवित्र स्वर्ण की भांति प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अथक प्रयास किया है। श्रील प्रभुपाद जी के पास धन नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी को अपने पारिवारिक सदस्यों कोई सहयोग नहीं प्राप्त था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखने का साहस किया। किसी प्रकार से उन्होंने हजारों पन्नों में इन ग्रंथों को लिखा, लेकिन उनके पास प्रकाशन करने के लिए कोई धन नहीं था, तो वे किसी प्रकाशक को ढूंढ रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें धन प्रदान करे जिससे इस भगवद गीता का प्रकाशन हो सके। तो बहुत प्रयास करने के बाद जब उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उन्हें भगवद गीता के प्रकाशन के लिए धन देने के लिए तैयार है, श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन जब वापस अपने घर पर आए और ढूंढने लगे वो भगवद गीता की प्रतियां जिन पन्नों में उन्होंने भगवद गीता लिखी थी, तो देखा तो प्रतियां नहीं है घर पर, तो कितना दुख हुआ होगा श्रील प्रभुपाद जी को कि इतनी मुश्किल से भगवद गीता लिखी, फिर बहुत प्रयास करके व्यक्ति को ढूंढा जो प्रकाशन के लिए मदद करे, लेकिन अब भगवद गीता ही उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी हारे नहीं, फिर से लिखने का अभ्यास किया और साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का भी अनुवाद करना आरंभ किया। तो अब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 खंड प्रकाशित किए और उसको लेकर वे अमेरिका गए थे। अब तक भगवद गीता प्रकाशित नहीं हुई थी। उन्होंने अमेरिका में भगवद गीता को प्रकाशित करने का निश्चय किया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो 700 श्लोकों के शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य और विस्तृत तात्पर्य लिखा हुआ है, तो ग्रंथ वास्तव में बहुत मोटा हो गया था। श्रील प्रभुपाद जी ने जब शुरुआत में इस ग्रंथ को लिखा था तो उनकी योजना थी कि 1200 पन्ने का यह ग्रंथ होगा। अवश्य आज भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की कलात्मक विधि से इस ग्रंथ को बहुत छोटा बनाया गया है जिससे लोग पढ़ने में रुचि लेते हैं, लेकिन उस समय श्रील प्रभुपाद जी की योजना थी 1200 पन्नों का ग्रंथ होगा। तो जब इस ग्रंथ को प्रकाशन करने का समय आया तो बहुत सारे प्रकाशकों ने मना कर दिया, इतना मोटा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, कौन खरीदेगा इसे। अंततः जापान की मैकमिलन कंपनी ने निश्चय किया कि वे प्रकाशित करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम पूरा नहीं प्रकाशित करेंगे, अधूरा प्रकाशित करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो कुछ तो सही, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तैयार हो गए। तो पहला जो प्रकाशन भगवद गीता यथारूप का हुआ वह पूरा नहीं था, अधूरा था। अर्थात जो भी बड़े बड़े तात्पर्य थे उनको खटा दिया गया था और एक छोटा भगवद गीता बनाया गया था, और भक्तों ने प्रचुर मात्रा में इसका वितरण किया। इतनी अधिक मात्रा में भगवद गीता का वितरण हुआ संपूर्ण विश्व में कि मैकमिलन कंपनी को विश्वास हुआ कि इस भगवद गीता का वितरण हो सकता है। और तब अगली बार 1971 में भगवद गीता का पूरा, जिस प्रकार से आज हम देखते हैं यथारूप, उस प्रकार से प्रकाशित हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन 1944 से शुरू किया था और उस समय से ही वे भगवद गीता के बारे में लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया था, और उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि वे भगवद गीता यथारूप प्रकाशित करें, लेकिन अब तक वे सफल नहीं हुए थे और 1971 में वे सफल हुए थे पूर्णतया भगवद गीता यथारूप प्रकाशित करने में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया है इस भगवद गीता को यथारूप में हमें प्रदान करने के लिए, और फिर इस भगवद गीता के वितरण के लिए, इस भगवद गीता की यथारूप संदेश के प्रचार प्रसार के लिए भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट उठाया। श्रील प्रभुपाद जी एक समय भारत में थे और एक सज्जन व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो बात करते करते श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भारत की सरकार में एक भगवद गीता का विभाग होना चाहिए। जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, जल विभाग होता है या बिजली का विभाग होता है या अन्य कोई विभाग होगा, तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भारत की सरकार में भगवद गीता का एक विभाग होना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण रत्न है और इसका वितरण, इसका प्रचार संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण रत्न के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे भारत के जो भी लोग हैं या भारत के जो भी मंत्रीगण हैं अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन केवल भीख मांगते हैं कि हमें धन प्रदान कीजिए, हमें कुछ अन्य सामग्री प्रदान कीजिए। लेकिन मैं जब अन्य देशों में जाता हूं तो लोगों से भीख नहीं मांगता हूं, बल्कि भारत का जो सबसे प्रमुख रत्न है भगवद गीता, वह उनको प्रदान करता हूं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को जहां भी मौका मिलता था वे इस भगवद गीता के प्रचार प्रसार अधिकाधिक हो इस पर बल देने के लिए लोगों से बातें करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर तात्पर्य लिख रहे थे और भक्तों को कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि अब श्रील प्रभुपाद जी के जीवन का अंतिम समय आ गया है। भक्तों को तो यही विश्वास था कि श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रकार से भागवतम का तात्पर्य पूरा लिखते रहेंगे और भक्तगण अनेक अनेक ग्रंथों का वितरण करते रहेंगे, और इस प्रकार से ग्रंथों के वितरण का समाचार सुनकर श्रील प्रभुपाद जी हमेशा प्रेरित होते रहेंगे और श्रील प्रभुपाद जी सदैव हमारे बीच रहने वाले हैं। उनको कोई भी कल्पना नहीं थी कि श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ेंगे। तो एक समय भक्तों ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी को, क्योंकि भागवतम का 10वां स्कंद पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे थे, अर्थात कुछ ही समय में भागवतम का तात्पर्य समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि भागवतम के तात्पर्य लिखने के पश्चात आप कौन से ग्रंथ का तात्पर्य लिखने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने विचार किया और कहा कि भगवद गीता। तो भक्तों ने कहा कि भगवद गीता पर तो आप पहले से ही तात्पर्य लिख चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हां, लेकिन अनेक अनेक आचार्य ने बहुत सारे तात्पर्य हमें प्रस्तुत किए हैं, वे तात्पर्य भी बहुत मधुर हैं, उन तात्पर्यों का भी आस्वादन हमें करना चाहिए, तो मैं उन तात्पर्यों को आपको पुनः भगवद गीता लिखकर प्रदान करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता पर विशेष बल देते हैं और पुनः इसे लिखने के लिए प्रेरित थे। तो जब श्रील प्रभुपाद जी पुनः लिखने के लिए प्रेरित थे तो हमें तो कम से कम इसे बार बार पढ़ने और बार बार इसके वितरण के लिए अवश्य प्रेरित होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ बहुत ही महान है। तो भारत में अनेक अनेक क्षेत्रों पर इस भगवद गीता पर बल देने के लिए गीता समितियां हैं। आप किसी तीर्थ स्थल में जाओ, जैसे उडुपी जाते हो तो वहां पर आपको गीता भवन मिलेगा, या अनेक अनेक तीर्थ स्थलों में इस प्रकार से गीता भवन होता है और वहां पर भगवद गीता के श्लोकों को दीवारों पर अंकित किया जाता है, और शायद अर्जुन और कृष्ण रथ पर हैं उस प्रकार से पारसार्थी का चित्र भी अंकित किया जाता है, और वे लोग वर्ष में एक बार ऐसे गीता जयंती के उत्सव पर गीता सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को अपने प्रचार के दौरान इंदौर में जब गीता सम्मेलन आयोजित किया गया था इसी प्रकार से दिसंबर के माह में 1970 में, तो श्रील प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया गया था उस गीता सम्मेलन के कार्यक्रम में। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने सारे विदेशी शिष्यों के साथ इस गीता सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंदौर पहुंचे थे। तो आयोजकों ने श्रील प्रभुपाद जी के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की थी और यहाँ जो गीता सम्मेलन का कार्यक्रम था 7 दिनों का था और हर दिन शाम को श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन था व भक्तों के माध्यम से कीर्तन की व्यवस्था थी। लेकिन इन आयोजकों ने श्रील प्रभुपाद जी के अलावा अन्य जो साधु महात्मा गण हैं, संत गण हैं, अलग अलग संप्रदायों के, उनको भी बुलाया था। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर ये जो आयोजकों ने व्यवस्था की थी इसको देखने के लिए ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये गीता भवन के पास बहुत ही विशाल मात्रा में जगह है और इस पूरी जगह पर बहुत सारे टेंट लगाए हुए हैं जिसमें अनेकानेक स्वामी जी अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं और वे सभी इस गीता सम्मेलन के उत्सव में भाग लेने के लिए तैयार थे। और यहां गीता भवन इस प्रकार से गीता सम्मेलन के अलावा अनेकानेक प्रकार के सामाजिक कार्य भी कर रहा था, जैसे अस्पताल खोलना या गरीबों के बीच वस्त्रों को बांटना, तो उसका भी वर्णन उन्होंने पंडालों में किया हुआ था। तो पहली रात्रि को जब श्रील प्रभुपाद जी पंडाल में पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद जी को व उनके शिष्यों को पंडाल के एक स्थल पर बैठने की व्यवस्था की गई। तो उस समय देखा तो पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी को प्रवचन देने के लिए आखिरी वक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और श्रील प्रभुपाद जी के पहले जो भी सब वक्तागण थे वे सब कुछ तो बोल रहे थे लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वे हिंदी में बोल रहे थे, तो वे सब परेशान हो रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी सब कुछ समझ रहे थे और बहुत क्रोधित हो रहे थे क्योंकि ये सारे जो वक्तागण थे भगवत गीता पर बोल रहे थे लेकिन भगवत गीता नहीं कह रहे थे। वे सब अपने अपने शब्दों में किसी प्रकार से मायावाद का ही वर्णन कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत कष्ट हो रहा था उस सभा में बैठकर। श्रील प्रभुपाद जी से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इन सभी वक्ताओं की समाप्ति हो और वे भगवत गीता के संदेश को यथारूप प्रस्तुत करें। तो वे चुपचाप अपना जपमाला को धारण किए हुए जप कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब श्रील प्रभुपाद जी का समय आया, श्रील प्रभुपाद जी व्यासासन पर पहुंचे और बहुत ही उत्साह से श्रील प्रभुपाद जी ने कहर आरंभ किया कि हमने भगवत गीता को यथारूप में संपूर्ण विश्व में प्रस्तुत किया है। भगवत गीता हमें परंपरा के माध्यम से ही यथारूप प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से कल्पना के माध्यम से हम भगवत गीता के संदेश को नहीं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन जो कि भगवान के महान भक्त हैं और क्योंकि वे भगवान के महान भक्त हैं इसलिए भगवान ने अपना यथारूप संदेश अर्जुन को प्रदान किया, उसी प्रकार से केवल भक्ति के भाव को धारण करके ही हम भगवत गीता के संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना के माध्यम से भगवत गीता के संदेश को कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया कि कैसे भगवत गीता का संदेश प्राप्त होता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि कोई भगवत गीता को सामने रखकर भगवत गीता पर कोई गलत अर्थ प्रस्तुत करता है तो यहां भगवत गीता के नाम पर सारे समाज को धोखा देने के बराबर है। इस प्रकार से हमें समाज को धोखा नहीं देना चाहिए और हमें ऐसे धोखेबाजों से बचना चाहिए और भगवत गीता को यथारूप हमें स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि मैंने यहां और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि मैंने यहां भगवत गीता यथारूप संपूर्ण विश्व में प्रस्तुत किया है, तो संपूर्ण विश्व के लोग इस भगवत गीता को स्वीकार कर रहे हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं ये सारे विदेशी शिष्य, इनका जीवन किस प्रकार से इस भगवत गीता के संदेश को प्राप्त कर परिवर्तित हो गया है। तो सारे जो भी श्रोतागण थे बहुत उत्साहित हो गए श्री प्रभुपाद जी को सुनकर, और सब खड़े हो गए, और उस समय श्री प्रभुपाद जी के शिष्यगण वे भी खड़े हो गए, और तब श्री प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि कीर्तन कीजिए, और फिर बहुत ही उत्साह से सारे भक्तों ने कीर्तन किया, वो सारे श्रोतागण जो थे उन्होंने भी कीर्तन में भाग लिया, और यह कीर्तन इतना रोचक रहा कि संपूर्ण इंदौर शहर में अनेकानेक प्रवचनकर्ताओं ने क्या कहा उसका वर्णन नहीं हुआ, लेकिन अंत में प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से भगवत गीता यथारूप के संदेश को प्रस्तुत किया, और विशेष रूप से इस यथारूप संदेश के आधार पर हमें अपने जीवन में भक्ति को अपनाना चाहिए, और इस कलयुग में भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रमुख संदेश को संपूर्ण इंदौर के वासी जान गए, और अगले दिन रात्रि के समय जब पंडाल का कार्यक्रम था तो बहुत संख्या में भीड़ आई थी, और सबका उद्देश्य यही था कि हमें श्री प्रभुपाद जी को सुनना है, और उसके बाद जो अंत में कीर्तन होने वाला है उसमें भाग लेना है। तो यहां तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी बहुत ही उत्साह से, बहुत ही बलपूर्वक इस भगवद गीता के प्रचार पर जोर दे रहे थे, और ऐसे उन्होंने इस गीता सम्मेलन के माध्यम से अनेकानेक लोगों को प्रभावित किया, विशेष रूप से ऐसे लोगों को प्रभावित किया जिन तक हम शायद सामान्य लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कोई साधु किसी अन्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, उसको आप भगवत गीता की शिक्षा देकर इस्कॉन की शिक्षाओं से प्रभावित करो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले से ही किसी अन्य संस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस गीता सम्मेलन में, जिस सम्मेलन में अनेक आश्रमों से अलग अलग साधु संतगण आए हुए थे, उनमें से दो लोगों को प्रभावित किया, बाबा बाल मुकुंद और एक थे वैरागी बाबा। तो इन दोनों को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रभावित किया, ये दोनों बाद में श्री प्रभुपाद जी का जब सत्संग अलाहाबाद में हुआ कुंभ मेला के अवसर पर, दोनों वहां पर श्री प्रभुपाद जी को सुनने के लिए आए थे, और दोनों श्री प्रभुपाद जी से बहुत प्रभावित हुए थे, और श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपनाया था। तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता के संदेश को संपूर्ण विश्व प्रसारित किया है, और श्री प्रभुपाद जी ने यही जिम्मेदारी अब हम सबको प्रदान की है। एक समय श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो श्री प्रभुपाद जी ने यही कहा कि मेरी सफलता का रहस्य यही है कि मैंने भगवान के संदेश को यथारूप प्रदान किया है। तो यही यथारूप संदेश हमें अपने जीवन में यथारूप पालन करना चाहिए, और यथारूप पालन करते हुए इसका यथारूप हमें वितरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मैं कहने के लिए इतना अधिक योग्य नहीं हूँ, आप सभी भगवद गीता का अधिकाधिक वितरण करते हो, और आपके समक्ष मैंने यहाँ कहा, तो जो भी मैंने कुछ उत्तम कहा सारा श्रेय आपको जाता है, और आप सभी मेरे लिए इसी प्रकार से कि मैं भगवान के यथारूप संदेश को प्रस्तुत करते रहूँ प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा।
ताई हम इस ग्रेस गौर लीला प्रभु को धन्यवाद देंगे। तीन बार हरी बोल बोलकर, हरी बोल, हरी बोल। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदरता से आज का क्लास दिया है।